أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا اللہ تعالیٰ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اس زمانے میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک ایسی جماعت عطا فرمائی جو مادہ پرستی کے ماحول سے بے نیاز دین کی طرف توجہ دینے والی اور دین کو دنیا پر مقدم رکھنے والی جماعت ہے. دنیا میں جتنی بھی جماعتیں تنظیم کی صورت میں کام کر رہی ہیں ان میں اس پہلو سے یہ جماعت بالکل منفرد ہے کہ اس کا ہر کام محض للہ ہوتا ہے اور کام کروانے کی قوت ہر دل سے پھوٹتی ہے، باہر سے نہیں آتی. اور طوعی طور پر وہ بہترین نظام ہے جو تمام دنیا کے سامنے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے. ان نیک باتوں میں سے جو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں اور توجہ اور تربیت کی برکت سے جماعت کو حاصل ہوئی، ایک یہ ہے کہ نصیحت کا بہت جلد اثر ظاہر ہوتا ہے اور قرآن کریم کی اس آیت کی صداقت دل میں گھر کر جاتی ہے، فذکر فإن نفعت ذکرا، کہ تو نصیحت کر اور کرتا چلا جا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ تیری نصیحت کو بیکار نہیں جانے دے گا، یقیناً نصیحت فائدہ پہنچائے گی. اس پہلو سے میں نے دیکھا ہے کہ بعض باتوں کی طرف جب توجہ دلائی گئی تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ساتھ جماعت احمدیہ نے بڑی جلدی ان امور کی طرف توجہ شروع فرما دی. چندوں کو صحیح کرنے اور شرع کے مطابق دینے کے لیے کہا گیا. تمام دنیا سے بکثرت ایسی اطلاعیں مل رہی ہیں کہ بعض جگہ خدا تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دگنا تگنا چوگنا بھی چندہ کر دیا گیا، اور لکھنے والوں نے بڑی معذرت اور شرمندگی کے ساتھ لکھا کہ ہمیں پہلے خیال ہی نہیں تھا لیکن اب ہم نے اتنے گنا بڑھا کر چندہ دینا شروع کیا ہے، اور مغفرت کے لیے دعا کی درخواستیں بھی کی. اب اس جماعت کی تو کوئی مثال نہیں ہے دنیا میں. ہر نصیحت جو کی جاتی ہے اس پر عمل کرنے والے اس کثرت کے ساتھ آگے آتے ہیں कि अल्लाह ताला की हम के साथ दिल भर जाता है। एक अहले रब्बा को मैं नसीहत की थी कि जलसा सालाना आ रहा है, उसकी तैयारी करें, अपने घरों को साफ करें, अपनी गलियों को साफ करें। चुनांचे खुदा ताला के फजल से इसका भी बहुत ही अच्छा असर जाहिर हुआ है। तमाम रब्बा में खुदाम क्या और अंसार क्या बड़ी मेहनत और तवज्जो के साथ गंदगियों को साफ कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि मेहमानों को किसी किस्म की किसी नौ की तकलीफ ना पहुंचे। फिर गुज़श्ता से पैवस्ता जुमा ये तवज्जो दिलाई गई थी कि जुमे की हाजिरी की तरफ खुसूसी तवज्जो दें, क्योंकि रब्बा की आबादी के लिहाज से ये महसूस हो रहा था इस कसरत से जुमा पढ़ने वाले नहीं आते जितने आने चाहिए। चुनांचे पिछले जुमे भी मैंने महसूस किया कि खुदा के फजल से इस तहरीक का नुमाया असर जाहिर हुआ, और आज भी मेरी आंख देख रही है कि अल्लाह ताला के फजल और उसके एहसान के साथ सुनने वाले कानों ने उस बात को सुना और अमल करने वाले दिलों ने उनको अमल पर मजबूर कर दिया। चुनांचे आज मस्जिद की रौनक खुदा ताला के फजल से उस जुमे की निस्बत बहुत बेहतर है जिसमें मैंने ये तवज्जो दिलाई थी। तो अल्लाह ताला की जितनी भी हम की जाए कम है, जितना भी शुक्र अदा किया जाए कम है। हमारे पास तो सिवाय इखलास के दौलत के और कुछ भी नहीं, और दिलों में जो अपने अंदर से एक कुव्वत पैदा होती है उसके सिवा काम चलाने के लिए और कोई कुव्वत नहीं। और ये दोनों चीजें दुआ की बरकत से बढ़ती हैं और नश्वनुमा पाती हैं। अल्लाह ताला सिलसिला अली अहमदिया को इसी तरह जिंदा और पाइंदा रखे और दिलों को खुलूस और उस अंदरूनी कुव्वत से भर दे जिसके नतीजे में दीन के काम चला करते हैं। अब चंद छोटी बातें, छोटी तो नहीं कहना चाहिए क्योंकि हकीकत में वो बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन मतलब ये है कि सादा सी बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। छोटी इस लिहाज से हैं कि हर इंसान उनको इख्तियार कर सकता है। अपने मज़मून के लिहाज से बहुत ही बड़ी बातें हैं, लेकिन अमल के लिहाज से नहायत आसान और सादा और हर इंसान के की दस्तरस के अंदर हैं। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं जो कोई कह सके कि मेरी ताकत से बाला है। जलसे के हकूक अदा करने की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूं। ये बशरी कमजोरी होती है कि इंसान उन इज्तमात को जो नहायत आला मकासिद की खातिर मुनक़िद किए जाते हैं रफ्ता रफ्ता मेलों ठेलों में बदलने की कोशिश करता है, और ये जो इंसानी रुझान है ये दुनिया के पर्दे में हर जगह नजर आता है। बहुत ही अजीमुशान इज्तमात की बुनियादें अल्लाह के अजीमुशान बंदों ने डाली, यानी अंबिया ने, और इल्ला माशाल्लाह दुनिया की अक्सरियत ने उन तमाम इज्तमात को मेलों में और लगव खेलों में तब्दील कर दिया, और बजाय इसके कि जिक्र इलाही की खातिर वो इज्तमात होते लहो लाभ के लिए वक्फ हो गए। ये एक ऐसा तभी रुझान है जो रफ्ता रफ्ता जड़ पकड़ता है और आहिस्ता आहिस्ता ये बीमारी आगे आना शुरू हो जाती है, और बार बार इसकी तरफ तवज्जो की जरूरत है। जिस तरह जमींदार जानता है कि खेतों की तरफ अगर वो तवज्जो ना दे तो लाजमन जड़ी बूटियां उगती हैं और बार बार उनकी तरफी की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। इसी तरह खाकों में कितनी ही जिंदा हो, जिंदगी का एक दूसरा कानून भी जारी है, यानी मुखालफाना कुव्वतें भी तो खुदा ताला के कानून के ताबे ही अमल करती हैं। इसलिए जिंदा कौमों का काम है हिकमत के साथ जायजा लेती रहें, और जहां जहां इस किस्म की जड़ी बूटियां जिनका हमारे अंदर नफूस जड़ पकड़ने का कोई हक नहीं वो जड़ पकड़ने की कोशिश करें, उनकी तल्फी की जाए। तो जलसा सलाना में भी जो हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की बड़ी गिरिया उजारी की दुआओं के नतीजे में जारी हुआ और बहुत ही पाक और आला मकासिद की खातिर जारी किया गया, इसी किस्म के रुझानात का पता चलता है। कई किस्म की खराबियां जो आहिस्ता आहिस्ता जाहिर हो रही हैं उनमें कुछ मसलन ये हैं कि बाजार हमारे तकवा की निशानदेही नहीं करते, बल्कि आम दुनिया के बाजारों की तरह वहाँ नौजवानों का इज्तम, गप्पें, मजाक की बातें और गोया एक सैरगाह के में वो इकट्ठे हुए हैं और चंद दिन गपशप के लिए आए हैं। ये ठीक है, वहाँ बाकी ऐसे शहरों के मुकाबल पर अल्लाह ताला के फजल के साथ बड़ा नुमाया फर्क ये है कि बेहयाई की बातें वैसी नहीं होती जैसी ऐसे मौके पर दूसरे शहरों में होती हैं। लेकिन हम इस पर राजी नहीं हैं, इस फर्क पर। हमारा मनसब तो बहुत बुलंद है, हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि ये इज्तमात जमात अहमदिया की रूह का मजहर बने, हमारे बाजार एक इम्तियाजी शान रखें उस जमाने में और लोग देखकर महसूस करें कि ये मुख्तलिफ किस्म के इंसानों के बाजार हैं, आम शहरों के बाजार नहीं। ये इज्तिमा कुछ अजीब सी मखलूक का इज्तिमा है जो दुनिया में रहते हुए भी दुनिया से अलग सी मखलूक है। ये एहसास जब तक हर देखने वाले के दिल में पैदा नहीं होता हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हैं। फिर यही मजालिस घरों में भी लगती हैं, इससे तो इनकार नहीं कि हजरत अकदस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जलसे की गर्ज़ो गायत में एक ये भी बयान फरमाई कि मुख्तलिफ ममालिक और मुख्तलिफ शहरों के बसने वाले यहाँ इकट्ठे हों और एक दूसरे के साथ उनके ताल्लुकात उस्तवार हों, रवाबित कायम हों और मोहब्बत के माहौल में एक नहायत ही वसी सोसाइटी वजूद में आए जो दुनिया के कोने कोने से आने वाले लोगों पर मुश्तमिल हो और एक नहायत ही पाकीज़ा इस्लामी मुआशरा जन्म ले जिसमें बाहमी अख़ुव्वत की वजह सिर्फ अल्लाह ताला की मोहब्बत हो। चुनाचे ये सोशल फवायद जलसे के साथ लगे हुए हैं और इसके बहुत ही नेक असरात भी हम देखते हैं। इसलिए ताल्लुकात का क़याम, एक दूसरे से मिलना मोहब्बत के साथ, एक दूसरे का ख्याल रखना, मेहमान नवाजियां करना, ये तो काबिल एतराज बात नहीं। लेकिन जब घरों की मजालिस लगवियात की तरफ मायल हो जाएं, जब वहां हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की नज़मों की बजाय लगव गानों की आवाज़ें बुलंद होनी शुरू हो जाएं, आम हालात में भी अच्छा नहीं लगता लेकिन जलसे के दिनों में तो ये आवाज़ें बहुत ही तकलीफ देती हैं कानों को। टेलीविजन के प्रोग्रामों के गिर्द सारे घर इकट्ठे हुए हों बजाय इसके कि ये बातें हों कि आज का जलसा कैसा रहा और आइंदा के लिए स्कीमें बनाई जाएँ कि इन नेक तकरीरों के असर से या इन तकरीरों के नेक असर से हम अपने अंदर क्या तब्दीली पैदा करेंगे। मजलिसों को लगभग मजलिसों में तब्दील कर दिया जाता है, हर जगह तो ये नहीं लेकिन मैंने, मेरी आंख ने देखा, मेरे कानों ने सुना कि वाकयातन ये रुझान इस तरफ पैदा हो रहा है, उबल रहा है, तो इसकी देख करने की भी जरूरत है। फिर जो सबसे बड़ी खतरनाक बात जाहिर होती है वो ये है कि ये मजालिस इबादत के रस्ते में हायल होने लग जाती हैं। यानी नमाजों के औकात हैं और अजानें दी जा रही हैं लेकिन घरों की मजलिसें उसी तरह कायम और बड़े भी छोटे भी बेतकल्फी के साथ बैठे आपस में गपशप में मसरूफ और किसी को ख्याल नहीं आता कि खुदा ताला की इबादत के लिए बुलाया जा चुका है, हमें मस्जिदों में जाना चाहिए। किसी को से मुराद सिर्फ उन बाद घरों की बात है जहां ये होता है, यानी उन घरों में किसी को ख्याल नहीं आता, वरना तो अल्लाह ताला के फजल से बड़ा ही प्यारा नज़ारा होता है। बाज़ मस्जिदें तो छलक जाती हैं बाहर और वहां नमाजियों को अंदर जगह नहीं मिलती, लेकिन इसके बावजूद मस्जिदों को जितना भरकर बाहर छलकना चाहिए उतना नहीं छलकती। क्योंकि रब्बा की मसाजिद तो रब्बा की आम जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई है। कुछ वसी होगी, वसी तर होंगी, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इतनी नहीं कि सारे जलसा सलाना के मेहमानों को समो सकें। तो मस्जिद मुबारक में एक नज़ारा नजर आता है कि बाहर सेन तक लोग नमाजी पहुंच जाते हैं, सेनों से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बहुत सी दूसरी मसाजिद में मैंने देखा है कि सेनों से बाहर नमाजी नहीं निकलते। हालांकि अगर सारे नमाज पढ़ने वाले हों तो कोई वजह ही नहीं है कि इन मसाजिद के अंदर उस वक्त की सारी आबादी समा सके, यानी वो आबादी मुराद है जो मस्जिदों में जानी चाहिए, मस्जिदों में जाकर जिनको नमाज पढ़नी चाहिए। तो इस तरफ बड़ी तवज्जो की जरूरत है। जलसे के औकात में बड़ी काबिले फिक्र बात यह है कि जलसा हो भी रहा हो तब भी मेले ठेले का रुझान बाद जगहों में अपनी तौर पर जारी रहता है। हैरत होती है कि बड़ी तकलीफ उठाकर लोग बाहर से आए, बड़ी बड़ी दूर से खर्च करके सर्दी की तकलीफ बर्दाश्त की, सफर की सहूलतें बर्दाश्त की। सब हम भी जानते हैं कि अब वो सहूलतें मुहैया नहीं होती जिस तरह पहले हुआ करती थी, यानी रेलवे की अपनी मुश्किलात होंगी, दूसरे जो जराए मवासलात हैं उनकी भी मुश्किलात होंगी, लेकिन जो हमें याद है जिस तरह का एक मिसाली ताउन पहले मिला करता था, अब वैसा ताउन नहीं मिलता। तो उसके नतीजे में बाज दफा दो दो रातें बड़ी मुसीबत के साथ डब्बों में ठुस कर लोगों को गुजारनी पड़ती हैं, बड़ी मुश्किल उठाकर, बच्चे बीमार रोते बिलकते, बड़ी बड़ी मुसीबतें उठाते हैं बेचारे आने वाले। तो ये सब कुछ करने के बाद यहां आकर बाजारों की रौनक बन जाए बजाय इसके के जलसे में हाजिर हों और उससे इस्तेफादा करें, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। तो इसकी तरफ भी तवज्जो की जरूरत है। बाजार वालों को भी चाहिए कि वो ऐसे मौके पर दुकानें बंद कर दिया करें, लेकिन ये जो गैर जिम्मेदारी का रुझान हमारी कौम के अंदर पाया जाता है इसने बड़ी मुसीबत डाली हुई है। दो तीन रेड़े वाले जब दुकान लगा देते हैं तो देखा देखी सारे शुरू कर देते हैं, हर एक को खौफ ये हो जाता है कि मेरा भी इतना मारा जाए, ये सब कुछ कमा के ले जाएगा। ये तवक्कुल की कमी है। वो दुकानदार जो खुदा की खातिर दुकान बंद करते हैं, चाहे सारा बाजार भी खुला हो, उनका रिज़्क नहीं मारा जा सकता। अल्लाह राज़िक है। इसी जुमे के मुतल्लिक अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहल लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्मति फसौ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, कि जब तुम्हें खुदा के जिक्र के लिए बुलाया जाता है जुमे के दिन तो अपनी दुकानें अपने कारोबार बंद कर दिया करो। तुम ये समझते होगे कि ये नुकसान का सौदा है, तुम घबराओगे, लेकिन अल्लाह ताला बताता है कि ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, काश तुम्हें इल्म होता कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही बेहतर काम है कि खुदा की खातिर अपनी तिजारतें ठप कर दो। फिर आखिर पर खुदा ताला फरमाता है, वल्लाह खैरुर राज़िकीन, कि राजिक तो अल्लाह है और सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला खुदा है। तो जब यह तस्लीम है कि राजिक अल्लाह ही है, और यह भी मुसलमा बात है कि खुदा की खातिर हम अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं, तो फिर यह बदजन्नी अपने रब के ऊपर कि वो रिज़्क मार देगा हमारा, और हमारा रिज़्क जो हमारे मुकद्दर का था वो कुछ और अदम ताउन करने वाले ले जाएंगे, इसे बड़ी बेवकूफी और क्या हो सकती है। तवक्कुल एक बड़ी बुनियादी सिफत है। जो लोग तवक्कुल इख्तियार करते हैं अल्लाह ताला उनको कभी जाया नहीं करता। आजमाइशें तो आती हैं और तवक्कुल का हिस्सा हैं, तवक्कुल के फलसफे के अंदर आजमाइशें दाखिल हैं। अगर तवक्कुल से यह मुराद हो कि इधर कुछ छोड़ा और खुदा पे तवक्कुल किया, उधर फौरन वो मुयस्सर आ गई चीज, तो ये तो एक दुनिया का कानून बन जाएगा और हर दुनियादार भी इस तवक्कुल की तरफ दौड़ेगा। इसलिए अल्लाह के बंदों को दूसरे बंदों से मुमताज करने के लिए तवक्कुल में कुछ इख्फा भी होते हैं, कुछ पर्दे भी होते हैं, कुछ आजमाइशें भी होती हैं, लेकिन अंजाम कार तवक्कुल वाले कभी दूसरों की निस्बत पीछे नहीं रहा करते, हर बात में आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने बयान किया है, बड़े बड़े तवक्कुल करने वालों के लिए भी खुदा ने बड़े बड़े इम्तिहान रखे होते हैं। तज़किरतुल औलिया में एक ऐसे ही तवक्कुल करने वाले का जिक्र है। एक बुजुर्ग दुनिया को तज के एक गार में जाके पनाह गज़ीन हो गए इबादत के लिए, और उनका तवक्कुल यह था कि उन्होंने फैसला किया कि मैं चाहे भूख कितना ही मुझे सताए, इस जगह को छोड़कर बाहर दुनिया के सामने रोटी मांगने के लिए नहीं निकलूंगा, जो कुछ मांगना होगा इसी गार में अपने रब से मांगूंगा। चुनाचे अल्लाह ताला ने ऐसा इंतजाम कर दिया कि जौक दर जौक लोग वहां हाजिर होने लगे, हर किस्म की नेमतें उसी गार में पहुंचने लगी, और उस बुजुर्ग ने तवक्कुल का बहुत फल खाया, अल्लाह ताला की नेमतों को नाजिल होते देखा और इबादतों में और तरक्की की। यहां तक कि आजमाइश करने वाले ने आजमाइश का वक्त भी उन पर ला खड़ा किया। खुदा ताला ने फैसला फरमाया कि इस बुजुर्ग की इस जो दुनिया की नजर में एक बहुत बड़ा मुकाम रख चुका है, अब कुछ आजमाइश भी होनी चाहिए। चुनाचे एक ऐसा वक्त आया कि हर रोटी लाने वाले, हर तोहफा लाने वाले ने यह ख्याल किया कि इतने लोग तो वहां जाते ही हैं, आज मैं ना गया तो क्या फर्क पड़ता है। चुनाचे उस दिन खुदा ताला के फरिश्तों ने हर दिन को वहां कुछ पहुंचाने से रोक दिया। दोपहर को भी कोई नहीं आया, रात को भी कोई नहीं आया, दूसरे दिन भी नहीं आया, दूसरे दिन शाम को भी फिर कोई नहीं आया। 3 दिन का फाका पड़ा उनको, आखिर बेकरार हो गए और उस गार को छोड़कर एक दोस्त के पास पहुंचे। उसने जब देखा कि यह हाल है, बड़ी माजरत की और जो कुछ घर में हाजिर था, रोटियां जो पकी हुई थी वो पेश कर दी, सालन पेश कर दिया, लेकर बाहर अपने मस्कन की तरफ जाने लगे तो उस घर वाले का कुत्ता पीछे पड़ गया। यानी काटने के लिए नहीं, बल्कि रोटी की खुशबू की वजह से भूख उसकी हरकत में आ गई और बड़ा हिजान पैदा हो गया उसके अंदर। जुबान निकाल निकाल के कभी चाटता था, कभी भौंकता था। चुनाचे उन्होंने आधी रोटियां उसको दे दी। रोटियां खा के वो अभी थोड़ी दूरी चले थे कि कुत्ता रोटियां खा के फिर उनके पीछे फिर भौंकने लग गया। उस वक्त उन्होंने, जिस तरह इंसान कुत्ते से बातें करता है ये मतलब तो नहीं होता कि कुत्ता समझता है, लेकिन फिर भी आदमी बातें करता रहता है जानवरों से, तो उन्होंने कहा तू बड़ा हरीस जानवर है, तेरे मालिक से जो कुछ मैंने लिया था आधा मैंने तुझे दे दिया और तू फिर भी पीछा नहीं छोड़ता, बड़ी हरीस है और बड़ा ही तू गंदा किस्म का जानवर है। उस पर कश्मी हालत तारी हुई और कुत्ते ने जवाब दिया कि मैं हरीस हूं कि तू हरीस है, मैं तो कई के दिन का फाका करता हूं, अपने मालिक का दरवाजा तो नहीं छोड़ा करता, अभी भी अपने मालिक की रोटियों की खातिर ही तेरे साथ लगा हूं, तू तो घर से नहीं लेके आया था, लेकिन तू अजीब है कि तेरे मालिक ने तुझ पर इतने एहसान किए, 3 दिन का फाका बर्दाश्त नहीं कर सका और मेरे मालिक के दरवाजे पे आ गया। ये कश्मी हालत दूर हुई तो सारी रोटियां वहां फेंक दी, बेख्तियार रोते चिल्लाते गिरिया उजारी करते हुए अपनी गार की तरफ वापस आए, अल्लाह तो मुझे माफ फरमा, मैं इस कुत्ते से भी ज्यादा जलील निकला। वहां पहुंचे तो एक हजूम खलाइक खड़ा था, इंतजार कर रहा था, परेशान था कि ये कहां चले गए और दुनिया जहान की नेमतें लेकर वो हाजिर हुआ हुआ था। तो तवक्कुल करने वाले को खुदा जाया नहीं किया करता, लेकिन तवक्कुल करने वाले के इम्तिहान भी आते हैं। अगर आप इम्तिहानों में साबित कदम रहे तो मुमकिन नहीं है कि कभी दुनिया में कोई तवक्कुल करने वाला जाया कर दिया जाए। बस ये छोटी छोटी तिजारतों की खातिर, ये 1-2 दिन के चंद घंटों के रिज़्क के खौफ से अगर आप दुकानें जारी रखेंगे तो ये तो तवक्कुल तो दरकिनार, ये तो बहुत ही गिरी हुई बात होगी। اتنی دور سے لوگ جلسے کی خاطر آتے ہیں لیکن آپ کی دکانیں ان کو اپنی طرف بلاتی ہیں اور ان کے ایمان کے لیے ٹھوکر کو موجب بنتی ہیں, ان کے لیے آزمائش پیدا کر دیتی ہیں. چنانچہ پھر ایک آتا ہے, دو آتے ہیں, رفتہ رفتہ ایک جلسہ سالانہ میں ہجوم ہوتا ہے اور ایک بازاروں میں اکٹھا ہو جاتا ہے. پھر نماز کے اوقات میں دکانیں بند نہیں ہوتی, حالانکہ ہم عبادت کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں, عبادت کے لیے ہی یہ سارا کاروبار چل رہا ہے. یہ کارخانہ ہے کیا؟ اسی لیے نا کہ دنیا کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا مزہ بتائیں, ان کو آشنا کریں عبادت کی لذتوں سے, اور رفتہ رفتہ ساری مخلوق اپنے رب کی عبادت کرنے لگے. یہ ہے مقصد جلسہ سالانہ کا. تو اس مقصد کے خلاف عین اس موقع پر حرکت ہو رہی ہو جبکہ یہ مقصد اپنے عروج کو پہنچا ہوا نظر آتا ہے. ایک بہت ہی قریب منظر شکل ہے. بس عبادت اور جلسے کی حاضری خدا کی خاطر, اور خدا کی خاطر ان دنوں میں رزق کی پرواہ نہ کرنا, یہ تین چیزیں ہیں جن کی میں نصیحت کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے اس عظیم الشان جلسے کے نہایت ہی پاکیزہ اور بلند اور عظیم الشان مقاصد کو ہمیشہ زندہ رکھیں. اپنی تمنائیں کچلی جاتی ہیں تو کچلی جائیں, اپنے مفادات مرتے ہیں تو مرنے دیں, ان کی پرواہ نہ کریں. اس جلسے کے مفادات پر کو اپنے مفادات پر ترجیح دیں, پھر دیکھیں کہ اللہ آپ پر کس طرح مہربان ہوتا ہے. اتنا مہربان خدا ہے, اتنا رحم کرنے والا, اتنا کرم کرنے والا ہے کہ کوئی تھوڑا سا بھی اس کی راہ میں خرچ کرتا ہے یا تکلیف اٹھاتا ہے تو اسی کو نہیں بعض دفعہ اس کی پشتوں تک کو آرام پہنچاتا ہے خدا تعالیٰ. ایسے خدا سے منہ موڑنا, بے وفائی کرنا, توکل میں کمی کرنا سوائے اپنے نقصان کے اور کچھ نہیں ہے. بیرونی جماعتوں کو بھی چاہیے کہ وہ آنے والوں کو پہلے سے سمجھائیں اور اپنے طور پر بھی انتظام کریں کہ کسی ضلع سے, کسی بڑے شہر سے آنے والے جلسے کی برکتوں سے غافل اور محروم نہ رہیں اور عبادتوں سے غافل اور محروم نہ رہیں. بعض لوگ بعض اچھے مقرر کی تقریر کی خاطر وہاں پہنچ جاتے ہیں اور انہوں نے باقاعدہ نشان لگائے ہوتے ہیں کہ فلاں تقریر میں بیٹھنا ہے اور فلاں میں نہیں بیٹھنا, کیونکہ فلاں مولوی صاحب بہت تقریر کرتے ہیں اور فلاں مولوی صاحب دلچسپ تقریر کرتے ہیں. حالانکہ یہ بہت ہی ایک ناقص العقل آدمی کا فیصلہ ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس میں دو پہلو ہیں جو پیش نظر رہنے چاہیے. اول یہ کہ خدا کی رضا کی خاطر اگر آپ بیٹھتے ہیں, خواب بور بھی ہو رہے ہیں, تو اللہ تعالیٰ کی رضا جو آپ کو مل رہی ہوتی ہے اس سے بہتر اور کیا چیز حاصل ہو سکتی ہے. آپ نے دیکھا نہیں, جب تک غیر ملکیوں کے لیے ترجموں کا انتظام نہیں تھا صبح سے شام تک سارے غیر ملکی خاموشی سے بیٹھے ہوتے تھے, ایک آواز نہیں آتی تھی ان کی طرف سے. یعنی چھ چھ گھنٹے مسلسل روزانہ محض اللہ کی خاطر بیٹھنا, ایک لفظ بھی ان کو سمجھ نہیں آ رہا. ان کو دیکھ کر ان سے ہی نمونہ پکڑا ہوتا. یہ خیال کر لینا کہ وہ آئے اور سب کچھ ان کا وقت ضائع گیا, پیسے ضائع گئے, ہزار ہار روپیہ کر کے ہزاروں میل سے وہ آئے ہیں, یہ خیال ہی بے وقوفی کا خیال ہے. آنے والے جانتے ہیں کہ ان کے دل برکتوں سے بھر رہے ہوتے ہیں, جب وہ جاتے ہیں تو ان کی کیفیت پلٹ چکی ہوتی ہے, اس وقت بھی جب کہ ایک لفظ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. تو یہ وقت ویسے اپنی ذات میں برکتوں کا وقت ہے. جب خدا کی خاطر آپ خاموشی سے کسی جگہ بیٹھتے ہیں تو ویسے ہی یہ سودا ہی بڑا مفید اور کارآمد سودا ہے. لیکن اس کے علاوہ یہ بھی ایک نفس کا تکبر ہے کہ فلاں تقریر کچھ نہیں اور بیکار ہے ہمارے لیے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کافی عالم ہیں, ہمیں بھی کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے فلاں تقریر. حالانکہ لوگ بڑی محنت سے تقریریں تیار کرتے ہیں اور ہر تقریر میں کوئی نہ کوئی ایسا نقطہ ضرور ملتا ہے کہ جو بڑے سے بڑے عالم کے ذہن میں بھی نہیں آیا ہوتا. بڑی محنت کی جاتی ہے اور بہت ہی فائدہ پہنچ سکتا ہے. مجھے یقین ہے کہ اگر جلسے پہ آنے والے پورے جلسے کی تقاریر میں سے ایک دفعہ گزر جائیں تو بالکل ان کی کایا پلٹ ہو جائے گی. उनके इल्म में बरकत होगी, उनके अखलाक में बरकत होगी, वो एक तब्दील हुई हुई शख्सियत लेके वापस लौटेंगे। और अगर सिर्फ अपनी लज्जत की खातिर आपने बैठना है तो उसमें तो फिर एक खुदगर्जी का पहलू है, उसमें रजाए बारी ताला का पहलू कहां चला गया। जो तकरीर पसंद है वहां बैठ गए, जो नहीं पसंद उसमें ना बैठे। जैसे कि अपनी एक हुरमत है, उस हुरमत का ख्याल करेंगे तो फिर आपका सारा वक्त रजाए बारी ताला का वक्त शुमार किया जाएगा। तो अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। जैसे कि मैंने बयान किया था, हैं ये छोटी छोटी बातें, हर शख्स के बस में हैं, लेकिन मुश्किल भी हो सकती हैं। अगर दुआ की तौफीक ना मिले, अगर खुलूस ना हो, अगर इंसान एक इरादा पुख्ता करके इन बातों पर अमल करने की कोशिश ना करे तो आसान चीजें भी मुश्किल हो जाया करती हैं। और जहां तक मजमून का ताल्लुक है अपनी जात में, ये बहुत ही अहम है और बड़े आला मकासिद को पूरा करने वाली बातें हैं। अल्लाह ताला हमें इनकी तौफीक अता फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अन्फुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله